का विषय है लाइफ ऑफ ए योगी। आप सभी योगी बनना चाहते हैं क्या? योगी बनना चाहते हैं? दो शब्द होते हैं, योगी और एक वियोगी। क्या पसंद है? वियोगी होता है जो डिटैच, मतलब दुख में हमेशा दुखी रहता है, और योगी सदा मुस्कुराता रहता है। क्या बनना है, योगी बनना है वियोगी बनना है? योगी तो वैसे हम सभी ही हैं। आप समझते हैं हम सभी योगी हैं? आप सभी योगी हैं। योगी, योग मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? क्या समझते? एक माइक दे दो इनको, एक हैंड माइक दे दीजिए, सो दैट वी आर इंटरेक्टिव, है ना, वी कैन इंटरेक्ट। एक हैंड माइक होता है ना, दे दीजिए, कॉर्डलेस माइक दे दीजिए। तो योग माना क्या होता है? हाँ जी, जुड़ना। योग मीन्स कनेक्शन, राइट? योग दो चीज का योग होता है ना। शादी भी तो क्या है, योग है ना? नहीं, योग है। हम आपस में परिवार में रहते हैं, वहां भी योग है ना, कनेक्शन है ना हमारा, आपस में संबंध है ना। पर ये योग, ये कोई कौन से योग की बात हम कर रहे हैं? योग और मेडिटेशन, योग योगा, योगा योग, योग भी बोल देते हैं और मेडिटेशन भी बोल देते हैं। यहां रख दीजिए, यहां पर किसको बोलना हो, यहां रख दीजिए, सुनो, यहां रख दीजिए, सुनो भैया, सुनो, इधर यहां रख दीजिए, जिसको भी बोलना होगा आगे आके बोल सकते हैं, राइट? बस ठीक है। योग माना कनेक्शन, राइट? इसको दूसरा वर्ड इसके लिए मेडिटेशन वर्ड भी है। तो बेसिक, व्हाट इज मेडिटेशन या व्हाट इज योग? तो हम इसको पहले इसके में जाएं, मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ मेरे भी एक्सपीरियंस में, कैसे मैं कैसे एक कन्वेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट से मैं इस एरिया में कैसे आ गया, हाउ माय लाइफ वाज चेंज्ड, मेरी लाइफ कैसे बदली, कैसे योग मेरे जीवन में आया, वो भी मैं शेयर करूंगा, और कैसे मेरे जीवन का एक पार्ट बन गया। पार्ट क्या मतलब, राधा, मेरा जीवन ही योगी बन गया। एक प्रोफेशनल से कैसे मैं योगी बन गया, और कैसे मैं दिल्ली छोड़ करके एस्कॉट आर्ट इंस्टीट्यूट छोड़ करके मैं यहां पर, मैंने आ गया, मैं 23 साल से मैं यहां पर हूँ। तो कैसे मैंने फिर कैसे रिसर्च की, कैसे हमने योग का प्रयोग किया, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे हमने उसको रियल योग में, योग का क्या हमारी लाइफ में, खाली मेरी लाइफ में नहीं, जो भी हमारे फील्ड में लोग आते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, या हम पब्लिक में जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी लाइफ में कैसे परिवर्तन आ जाए, वो कैसे एक अच्छी लाइफ, सुखमय और शांतिमय जीवन जी सकें, इस बात को मैं आपसे शेयर करूंगा। और आपसे क्वेश्चन भी मैं चाहूंगा कि अगर कोई मन में क्वेश्चन है आपके, कोई बात है, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है, सो वी कैन बी इंटरेक्टिव, राइट? ओके, सिर्फ सबसे पहली बात मैं योग की बात कर लेता हूं थोड़ा सा, फिर देन वी लुक प्रोसीड। योग या मेडिटेशन, जो मेडिटेशन वर्ड है, मेडिटेशन का जो वर्ड है बेसिकली मेडिटेशियो से आया, एक लैटिन वर्ड है मेडिटेशियो, जिसका मतलब है टू फोकस, टू कंसंट्रेट ऑन द रियल, ऑन द ट्रूथ। अगर हम कहें योग क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, बीइंग द ट्रूथ। तो क्या हुआ, मेडिटेशन क्या है, सत्य को अनुभव करो, सत्य को जीना, सत्य बनना, यह है मेडिटेशन, यह है योग। सत्य से जुड़ना, योग जब शब्द इस्तेमाल कर सत्य से जुड़ना, तो व्हाट इज द ट्रूथ, क्वेश्चन आता सत्य क्या चीज है, यस, व्हाट इज ट्रूथ, बोली, आप तो सभी अनुभवी है ना, तो सोल विद सुप्रीम सोल, पर सत्य की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ, सत्यम शिवम सुंदरम, और हाँ जी, यस यस, सत्य की दो विशेषताएं होती हैं, एक तो सत्य एटर्नल होता है, सदा ही होता है, ना उसका कभी जन्म होता है, ना कभी वो मरण होता है उसका, इट इज ऑलवेज देयर, अविनाशी है वो, सदा ही है, और दूसरी उसकी विशेषता है वो कभी परिवर्तन नहीं होता, अनचेंजेबल है, राइट। तो एक जैसे बताया अभी बहन जी ने बताया हमें सत्यम शिवम सुंदरम, इसका क्या अर्थ है? नहीं ये नहीं, उसका अर्थ एक्चुअली सत्य ही शिव नहीं है, वो ऐसे गीत में ऐसे आता है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ऐसा नहीं। इसका रियल मीनिंग क्या है? शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। उसके कंपैरिजन में अगर ह्यूमन बीइंग को देखें, इंसान को देखें, इंसान जो है, आपने शायद आप कल ही आए ना, कल से शुरू हुआ ना आपका, कल से शुरू हुआ, अभी आपको शायद पूरा चैप्टर्स नहीं होंगे, फिर मैं आपको बता देता हूं। शिव ही सदा सत्य है, सत्य मीन्स ट्रूथ है, एवर ट्रूथ है, मतलब वो हमेशा ही जो परमात्मा शिव है, जो कल आपको थोड़ा ज्ञान मिला होगा उसके बारे में आत्मा परमात्मा का, तो थोड़ा उसमें बताया गया कि शिव जो है पॉइंट ऑफ एनर्जी है, लाइट है ना, बिंदी है, जैसे ज्योति बिंदु, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंगम है ना भारत में, 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो वो ज्योति का लिंग है ना, ज्योति है, एटर्नल एटर्नल लाइट है, वो सदा ही है ना, तो वो सदा शिव जो है वो सदा ही सोल कॉन्शियस है, मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित है, इसलिए इसको परम आत्मा कहते हैं। परम मींस सुप्रीम, सोल, हम क्या है? सोल, हम क्या है? बीइंग, हम आत्मा है, वो परम आत्मा है, क्योंकि वो हमेशा ही सोल कॉन्शियस है, हमेशा ही आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से बाहर है, उनका जन्म नहीं होता, सदा ही निराकार है। और हम आत्माएं, हम मनुष्य आत्माएं आधा कलप, शायद कल सुबह आपका चैप्टर होगा वो वाला, आधा कलप मीन्स सत्यिक और त्रेता में हम आधा कलप सोल कॉन्शियस रहते हैं, जिसे हम स्वर्ग भी कहते हैं, उसमें आधा कलप हम सबके सब आत्म माने देते हैं, हम सोल को ऑटोमेटिक सोल कॉन्शियस रहते हैं। देवता जितने भी देखेंगे आप, कोई भी देवता की अगर फोटो देखेंगे, आपको देख करके उसको लगेगा जैसे वो सोल कॉन्शियस है, मतलब वो एकदम एटर्नल फीलिंग में है, मरने का कोई डर नहीं है, जन्म मरण के जैसे कहते देवताएं अमर हैं, अमर नहीं, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, दूसरा शरीर लेते हैं, किंतु वो जन्म मरण के चक्र से, मतलब वो जन्म मरण के उनका समय पर अकाले मृत्यु नहीं होती, सत्ययुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है, जैसे आजकल बच्चे 30 साल में किसी को हार्ट अटैक मर गए, 40 साल में मर गए, कैंसर होगा किसी को, एक्सीडेंट होगा किसी का, अचानक मर गए, वहां ऐसा नहीं होता है, वहां एक फिक्स एज होती है, उस एज पर अपने आप ही हम शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर मिल जाता है, तो वहां मृत्यु का डर नहीं होता है। तो वो जो समय है आधा कलप, इस कलप के कलप 5000 वर्ष का है, उसमें 2500 साल हम आत्माएं सोल कॉन्शियस रहती है, मनुष्य आत्माएं, और आधा कलप हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। जब द्वापर ही शुरू होता है, जैसे कहते हैं ना एडम और ईव ने जब फॉरबिडन फ्रूट खाया तो वो हेल में आ गए, पहले हेवन में थे उसके बाद हेल में आ गए, तो जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, देहभान में आते हैं, तो हम मतलब तो आधा कलप से हम क्या बन गए? बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम आत्मिक भान भूल जाते हैं। अगर किसी से भी आज पूछे आप कौन है, किसी से व्यक्ति से पूछे, क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे, अपना प्रोफेशन बताएंगे, हम पूछ रहे हैं आप कौन है? नहीं मैं सतीश गुप्ता हूं, मैं कह रहा हूं आप कौन है? सतीश गुप्ता तो आपके शरीर का नाम है, आप कौन है? मैं डॉक्टर हूं, है ना? आप कौन है? मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, है ना? ऐसे ही बोलेंगे ना, मैं पूछ रहा हूं आप कौन है, तो उस आपका जवाब नहीं उनके पास होगा ना, बट दे वोंट रियलाइज दिस दैट वो रियल में है क्या, राइट? तो ये जो है आज की, तो हम आधा कलप मनुष्य आत्माएं, आधा कलप सोल कॉन्शियस है, आधा कलप बॉडी कॉन्शियस है, और फिर शिव सदा ही सुंदर है, शिव सदा ही सुंदर माना, शिव सदा ही पावन है, पवित्र है, अर्थात सुंदर है, और मनुष्य आत्माएं आधा कलप पावन है, पवित्र है, और आधा कलप कैसे है? शाम है, माना पतित है, विकारी बन जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में आ जाते हैं। आज का मनुष्य धरती पर बताओ एक मनुष्य भी ऐसा है जो कामी ना हो, जिसको क्रोध ना आता हो? आप में से कोई ऐसा है जो कभी क्रोध ना करते हो? हाथ उठाएं, जिनको जो जिन्होंने आज तक कभी क्रोध नहीं किया वो हाथ उठाओ, आज तक कभी नहीं किया, पक्का? एक ने हाथ उठाया, आपकी पत्नी से पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना, मेरे पास हार्ट के पेशेंट्स आते हैं ऑल ओवर द कंट्री से आते हैं ओपीडी में दिखाने के लिए, तो मैं उनकी पत्नी साथ में हमेशा कहता हूं, अपनी पत्नी को या पति को साथ में लेके आए, पत्नी बीमार है तो पति को साथ लेके आए और पति बीमार है तो पत्नी को साथ लेके आए, अकेले नहीं आना मेरे पास। तो मैं पूछता हूं इसकी इसकी ब्लॉकेजेस देख के, हार्ट की एंजियोग्राफी लेकर के आते हैं ना, उनकी मैं रिपोर्ट्स देखता हूं, रिपोर्ट्स देख के मैं कहता हूं आप कितने सारे ब्लॉक कैसे हो गए, तो आप क्या गुस्सा करते हैं, आपका स्वभाव कैसा है? डॉक्टर साहब मैं तो जरा भी गुस्सा नहीं करता। उसकी पत्नी तुरंत बोलेगी, डॉक्टर साहब इसके नाक पे गुस्सा रहता है हमेशा, बस उसको पता ही नहीं होता कि गुस्सा करते भी नहीं करते, है ना, हमेशा ही चिड़चिड़ करते रहते हैं, हमेशा ही सारा दिन देखो तो जब देखो उनके नाक पे गुस्सा रहता है और उसको पता ही नहीं मैं गुस्सा करता हूं। तो गुस्सा मतलब, तो ये जो है हमारा आधा कल्पम सोल कॉन्शियस, आधा कल्पम सुंदर है और आधा कल्पम श्याम। इसलिए इंसान को क्या कहते हैं, कृष्ण को क्या कहते हैं, श्याम सुंदर, है ना। तो शिव सदा सत्य है, सबसे बड़ा जो ट्रूथ कौन सा है, सत्य क्या है, वो परमात्मा है, सत्य है ना। और दूसरा ट्रूथ जो है, जो मतलब जो रिलेटिवली उसके, जैसे आत्मा भी कैसी है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है, जन्म होता है आत्मा का, आत्मा शरीर में आती है, पांचवें महीने में गर्भ में प्रवेश करती है, जिस दिन गर्भ में प्रवेश करती है उस दिन उस दिन मां को पता लगता है बच्चा पेट में मूवमेंट कर रहा है, राइट। उससे पहले मां को पता नहीं लगता है मूवमेंट कर रहा है ना। और फिर शरीर छोड़ने के बाद, जैसे जिस दिन शरीर छोड़ती है कहते हैं वो आत्मा निकल गई, है ना, ऐसे बोल देहांत, है ना, देह छोड़ के आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई, आत्मा फिर दूसरा शरीर मिल जाता है उसको, वो पांचवें महीने पर जहां गर्भ होगा जहां पर उसके लिए बन रहा है शरीर, वहां पर जाके फिर एंटर कर लेती है, फिर उसका दूसरा जन्म शुरू हो जाता है। क्योंकि आत्मा जो है कभी भी एक जैसी दूसरी अपरिवर्तनशील है, जब आत्मा ने शरीर में एंटर किया तो आत्मा बिल्कुल वही स्टार थी, फिर शरीर में रही, अपना काम किया, सारे काम बॉडी को चलाया, सब कार्य व्यवहार किया, और जब यहां से गई तो फिर वापस वैसे ही बिंदु के रूप में निकल गई, लाइट की ज्योति के रूप में निकल गई। शरीर हमारा जब हम पैदा हुए, हमारा वजन 2.5-3 किलो था, शरीर का वजन 2.5-3 किलो था, शरीर बढ़ता गया, शक्ल बदलती गई, है ना, नहीं बदली, बदली नहीं बदली, रोल बदलता गया, पहले छोटे बच्चे थे फिर थोड़े बड़े हुए स्कूल में गए और बड़े हुए फिर और बड़े हुए, हमारा रोल बदलता गया। हम कोई डॉक्टर इंजीनियर पैदा होता है क्या, आपने पहले शिप चलाया था क्या, या कहीं भी आपने जो भी आपका प्रोफेशन में है, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, आप उस हिसाब से आपका रोल फिक्स है क्या, आप ऑफिस में या कहीं जहां कार्य कर रहे हैं वहां पर आपका रोल अलग है, घर में आपका रोल अलग है, दोस्तों के साथ अलग है, बच्चों के साथ अलग है, रोल एक ही दिन में हमारे कितने रोल बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। तो जिसको हम कहते हैं मैं ये हूं, हम हैं क्या, वो हमारा लेबल है, जिस कमरे में जाते हैं जिस जगह पे जाते हैं हमारे लेबल दूसरा लगा के जाते हैं, नहीं जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर हूं, घर में आके डॉक्टर हूं क्या, घर में आके पति हूं, है ना, बच्चा हूं, किसी का बाप हूं, किसी का बाहर दोस्त हूं किसी का, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन है ना, किसी का भाई हूं, है ना, ऐसे आप भी सब में हैं, तो रोल हमारे बदल रहे हैं। तो जो रोल है वो हम नहीं है, जो बॉडी है वो नहीं है, राइट। तो ये जो व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज रियलाइजिंग द ट्रूथ, इस सत्य को मुझे जीना है, आई एम अ बीइंग, शब्द ह्यूमन बीइंग, शब्द क्या है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग दो शब्द से बना ना, ह्यूमन शब्द कहां से आया, ह्यूमन शब्द का मतलब जो लैटिन वर्ड से एक आया है ह्यूमन शब्द, ह्यूमस, ह्यूमस से आया है, ह्यूमस, और ह्यूमस का लिटरल मीनिंग होता है सॉयल, मिट्टी, और बीइंग का मतलब जो है वो लाइफ फोर्स है, और लाइफ फोर्स का अर्थ है सोल, लिटरल मीनिंग लाइफ फोर्स का क्या है, जीवनी शक्ति माना सोल। तो एक इंसान दो चीज से बना है, सॉयल एंड सोल, उसमें से हम क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये बोलने वाला कौन है, शरीर बोल रहा है इसमें कोई और बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अगर मैं निकल जाऊं आत्मा निकल जाऊं तो क्या शरीर बोल सकता है, वोकल कॉर्ड तो है, वॉइस अपरेटस है, है ना, जीव भी है, सब कुछ है, फिर तुम्हें क्या मैं बोल सकता हूं? मैं निकल जाऊं आत्मा तो आंखें देख सकती हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, काफी सीरियस है, गैस्ट्रिक कंडीशन में है, उसके रिलेटिव्स उसको लेकर के एम्बुलेंस में लेकर के आते हैं। इमीडिएटली आवाज होती है, एम्बुलेंस आती है, दरवाजे पर रुकती है, इमीडिएटली हमारी स्ट्रेचर पर उसको ले हॉस्पिटल कैजुअलिटी में लेकर के आते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर आते हैं। इमीडिएटली डॉक्टर्स देखते हैं उसको, इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट देते हैं, देखते हैं क्या कारण है उसका, उसको हार्ट बंद होने वाला है, उसको कार्डिक मसाज करते हैं, वेंटिलेटर लगा देते हैं, सांस नहीं ठीक से आ रहा उसको ब्रीदिंग देना शुरू करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना शुरू करते हैं, और दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, शॉक देते हैं, तो भी वो आदमी मर जाता है। लगे रहते हैं डॉक्टर्स, हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं हम लोग, और उसको फॉलो करने के बाद भी वो पेशेंट मर जाता है। कैजुअलिटी के बाहर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर उसके रिलेटिव्स खड़े रहते हैं। डॉक्टर जब उसका जो चीफ डॉक्टर जो होता है, जो उसकी उस पूरे उस प्रोग्राम को लुक आफ्टर करने वाला, जो बाहर आता है तो रिलेटिव्स को घेर लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ क्या हुआ, तो डॉक्टर क्या बोलता है, क्या बोलता है, आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, ही हैज गॉन या शी हैज गॉन, जो आपका था वो चला गया, टेक द बॉडी। क्या कहते हैं, क्या यूएस में, यूके में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी देश में ऐसा बोल सकते हैं, अपना पेशेंट वापस ले जाओ, ऐसा बोल सकते हैं? एक घंटे पहले क्या आया था हॉस्पिटल में, क्या आया था, एक पेशेंट आया था, राइट। अभी क्या जा रहा है बाहर, बॉडी। पहले उसका वजन 70 किलो था जब पेशेंट अंदर आया है ना, हमारे पास ऐसे वेट, ऐसे ऐसे बेड्स होते हैं जो वेइंग बेड्स होते हैं, बेड पे लेटाते ही उसमें वेट आ जाता है उसका, एग्जैक्टली कितना वेट है ना, बेड पे उसकी मतलब ना होती है, उसमें ऐसा एक वेइंग मशीन जैसे होती है, वो एक्यूरेटली डिजिटली बता देता है कि इसमें कितना वजन है। कुछ सीरियस पेशेंट्स का हमारे ऐसे मैनेज करना पड़ता है, अगर बॉडी में पानी रह गया, कुछ हो गया, तो हमें डेली का डेली वेट चाहिए होता है, और पेशेंट उठ नहीं सकता, तो हमें पेशेंट का वेट बेड ही बताता है डेली का ना, सुबह शाम किसी समय भी देख सकते हैं। तो पहले भी उसका वेट 70 किलो था, और अभी जब जा रहा है तो अभी कितना वजन है, अभी भी 70 किलो है, तो क्या निकल गया उसके अंदर से, क्या निकल गया, लाइफ फोर्स निकल गई ना उसके अंदर से, नहीं निकली। अभी इस पेशेंट के मरने से पहले इसका हम हार्ट बंद हो गया, हमने कितने इंजेक्शन दिए, हार्ट में भी दिए, सब दिया, दवाइयां दी, शॉक भी दिए, रिवाइव नहीं हो रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, सांस नहीं आ रहा है, अभी लीवर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि इस आदमी के मरने से पहले इच्छा थी कि अगर मेरे मरने के बाद मेरे कोई भी अंग अगर किसी को आवश्यकता है तो दे दिए जाए, इस आदमी के मरने की इच्छा थी, मरने के पहले इनकी इसी इच्छा थी। कई लोग आजकल अपने ऑर्गन बिल कर देते हैं ना पहले से, आजकल ऐसे फॉर्म्स भी होते हैं, आपको पता भी होगा, बॉम्बे में भी है, यहाँ भी हमारे फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं कि अगर हमारी ऑन डिमांड हम लोग बॉडी के अंगों को, मतलब किसी को आवश्यकता होती है तो हमको पहले से विल कर देते हैं, मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी से कोई भी अंग किसी को आवश्यकता ले सकते हैं, दे जा सकते हैं। अब उसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, उसका हार्ट जो होता है ना, हार्ट की नॉर्मल पंपिंग पावर कितनी होती है, 60% होती है, EF कहते हैं उसको, 60%, मतलब हार्ट जब पंप कॉन्ट्रैक्ट करता है 70 बार सिकुड़ता फैलता है, तो जब हार्ट सिकुड़ता है तो एक 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 बीट में, एक धड़कन में 60% खून को बाहर फेंकता है, मतलब बॉडी में सप्लाई करता है एक एक बीट में 60 ml, तो उसको कहते हैं 100 ml है अगर हार्ट की चैम्बर में खून, तो उसमें से 60 ml को बाहर फेंक देता है, बाहर माना सप्लाई के लिए दे देता है, इसको बोलते हैं 60% EF। जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, काफी हिस्सा हार्ट का मर जाता है हार्ट अटैक में, आर्टरी के बंद होने से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो हार्ट की पंपिंग पावर धीरे धीरे 30%, फिर 20%, फिर 15%, 10% भी हो जाती है, और 10% अगर EF हो जाती है तो उसका इलाज एक ही होता है, क्योंकि 10% जब सिर्फ 10% ब्लड बाहर जा रहा है, 90% ब्लड अंदर ही रह रहा है, तो 10% इज नॉट एनफ, वो जो पीछे रह रहा है वो फिर लंग्स में भर जाता है पानी, तो सांस आ नहीं पाता मरीज को, तो लेटे लेटे भी उसको सांस फूलता है, वो बोल भी नहीं सकता है ढंग से। तो ऐसे पेशेंट का इलाज कुछ एक ही इलाज है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है उसको। तो मान लीजिए अगर इस आदमी का जो इसकी डेथ अभी भी हुई, उसका टिश्यू और इसकी बॉडी का टिश्यू अगर इसकी मैचिंग हो जाए, टिश्यू मैचिंग हो जाए, जिसको हम हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी मैचिंग कहते हैं, टिश्यू मैच हो जाए, तो हम ये हार्ट यहां से निकाल करके डेड बॉडी में से जो काम नहीं कर रहा है उस आदमी में लगा सकते हैं जो कि जिंदा है किंतु उसका हार्ट कम काम, उस हार्ट को निकाल देंगे 10% वाले को और ये हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे और ये हार्ट वहां काम करना शुरू कर देगा, यहां पे काम नहीं कर रहा। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? इस डेड बॉडी में ड्राइवर निकल गया है, चलाने वाली शक्ति जो सत्ता थी वो निकल गई है, अब हार्ट काम नहीं करता, कुछ मर्जी कितनी मर्जी दवाई दो, किंतु हमने ये हार्ट निकाल करके उस आदमी में लगा दिया जिसमें आत्मा है, जो लिविंग है, वहां ये हार्ट काम करना शुरू कर देता, उस आदमी को नई लाइफ मिल जाती है। तो अर्थात हार्ट को चलाने वाला कौन? आत्मा ना। तो हार्ट को चलाने वाली सत्ता जो है वो आत्मा है, उस आत्मा जो अंदर एक एक जो मतलब पॉइंट ऑफ एनर्जी है, उससे एनर्जी हमारे हार्ट को जा रही है, सांस भी उसी से आ रहा है। मान लीजिए उस पेशेंट का, जिसके एक पेशेंट है जिसके हार्ट लीवर खराब हो गया बिल्कुल, और लीवर उसको ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है, हम इस डेड बॉडी में से लीवर निकाल के तुरंत हम लीवर वहां निकालू कस्ता निकाल के ये लीवर वहां लगा सकते हैं, ये लीवर जो यहां काम नहीं कर रहा है डेड बॉडी में वहां काम करना शुरू कर देगा, ऐसे किडनी निकाल के किडनी वहां लगा सकते हैं वो काम करना शुरू कर देगा। इवन आजकल लंग्स भी ट्रांसप्लांट करते हैं, इनके लंग्स खराब हो जाते हैं लंग्स भी ट्रांसप्लांट होते हैं। तो आज मतलब हम बहुत सारे ऑर्गन्स को मतलब इसका अर्थ क्या सिद्ध होता है कि ऑर्गन्स को चलाने वाला कौन? आत्मा। मैं एक छोटी सी आपको इसी पे एक बात सुनाता हूं। आपने कविता सुनी होगी बचपन में, सभी ने गाई भी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुनी गाई है? स्कूल में नर्सिंग में खाई होगी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ये किसने लिखी है कविता, पता है किसी को? ये कविता किसने लिखी है, ये पोएम किसने लिखी है? यस, एनीवन? कब से ये पोएम गाई? आपने गाई तो है ना स्कूल में, तो नर्सरी में सभी ने, मैं समझता सभी के यहां, विदेशों में भी मैंने देखा, रशिया में भी देखा और भी स्पेनिश कंट्रीज में भी गाते हैं, पर उनकी अपनी लैंग्वेज में है कि तो सभी सभी देशों में देखा, लगभग वहां सब जगह यहां पर ये ना ये जो राइम है ना नर्सरी राइम गाया जाता है। आज से लगभग 461 साल पहले है ना लगभग, एक फ्रांस में एक आदमी था, मतलब एक कवि था, वो उसका वो दो मतलब फ्रेंड उसका साथी जो था उसके दोस्त था, साथ वाले घर में रहते थे बचपन से, साथ साथ ही बड़े हुए छोटेपन से ही, अब दोनों बूढ़े हो गए थे लगभग 70-80 साल के दोनों हो चुके थे, तो दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। अचानक वो मर जाता है, वो जो साथी जो था ना उसका साथी, दिन में बैठे थे दोपहर में खाना वाना खा के लंच करके बैठे थे, अचानक उसका दहशत बंद हो जाता है, हार्ट की धड़कन बंद होती है, वो मर जाता है साथी। उनके रिलेटिव्स को बताते हैं साथी पड़ोस वाले घर में, वो उसके आते हैं देखते हैं मर गया है, उसको एक कफन बॉक्स में डालते हैं और शाम को 5-6 बजे तक सिमेट्री में दबा देते हैं, जो होता है उनका जो कब्रिस्तान होता है वहां दबा दिया जाता है। आज शाम को कभी बहुत उदास है वो व्यक्ति जो है जिसको मैं कभी रेफर कर रहा हूं, वो बहुत उदास है, बाहर बैठा है आसमान में देख रहा है, तारों की तरफ देख रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा दोस्त ठीक ठाक था, हम दोनों बातें कर रहे थे, अचानक वो मर गया, सब कुछ ठीक ठाक था, कैसे मर गया अचानक? हार्ट बंद हो गया, आंखें ठहर गई, सांस चलना बंद हो गया, कैसे मर गया वो? तो उसने जो है वो सोचता है इस बारे में, सोचते उसकी आसमान में नजर जाती है, तारों को देखता है, जब तारों को देखता है तो एक तारा चमक रहा होता है, तो उसके मन में ये आता है कि एक बार उसको बताया गया था, जो आपने सुना, आपने भी सुना होगा, जब यीशु का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो जब गडरिए थे ना शेफर्ड्स थे, उन्होंने आसमान में एक तारे को देखा था, चमकते हुए तारे को, उन्होंने कहा ये जो है तारा, इस तारे ने किसका जन्म लिया है? तारे ने यीशु के रूप में जन्म लिया है। तब उसको अंदर से रियलाइज होता है अंदर से कि यहां सितारा है, एक सितारा है जो यहां पर है, जब तक है सब कुछ चल रहा है, शरीर में सब कुछ कार्य कर रहा है। जैसे वो सितारा निकल जाता है, वो स्टार निकल जाता है, सब कुछ रुक जाता है, किंतु निकलता दिखाई भी नहीं देता है। और अब जब है, मेरे अंदर भी है, मेरे दोस्त के अंदर भी था, वो दिखाई नहीं दे रहा था कैसे कार्य कर रहा है, मैं भी समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे कार्य कर रहा है। वो निकल गया तो दिखाई भी नहीं दिया, तो उसके अंदर से कविता निकलती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो कविता उसके अंदर से निकलती है, कविता ट्विंकल ट्विंकल मतलब एक सितारा है जो टिमटिमा रहा है यहां पर, और जो सब कुछ चला रहा है शरीर को, किंतु कैसे चला रहा है ये पता समझ नहीं आता, कैसे वो एक छोटा सा सितारा यहां पर सब कुछ चला रहा है, आंखों से देख भी रहा है, कानों से सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, सांस भी उसके कारण सांस भी हिला रहा है, हार्ट भी चल रहा है, पेट में खाना भी पच रहा है, बाल भी बढ़ रहे हैं हमारे, नहीं हो रहे, बॉडी के अंग भी चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन सब कुछ हो रहा है, चल रहे हैं, डेड बॉडी चल भी नहीं सकती, आत्मा है तो सब कुछ चल फिर सकते, सब काम कर सकते हैं, हमारी बुद्धि भी काम कर रही है, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, कितना वंडरफुल चीज है। इसलिए कहता हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फिर उसके मन में परमात्मा के बारे में ख्याल आता है, गॉड के बारे में, फिर गॉड के बारे में क्या सोचता है वो एक ढूंढने लगता है परमात्मा कहां है, गॉड कहां, पृथ्वी पे कहीं है नजर नहीं आता है, समझ नहीं आता है, फिर देखता है सूरज चांद तारे पे कहीं पर है नहीं, उसको फिर अंदर से रियलाइज होता है एक और सितारा है, वो सूरज चांद तारों से भी परे है, और वो कैसा है, वो एवर शाइनिंग है, ये टिमटिमाता है, इसकी लाइट कभी कम ज्यादा होती है, ट्विंकल ट्विंकल है, किंतु वो एवर शाइनिंग है, वो इस सूर्य चांद तारों से भी परे, आसमान से भी परे। तो उसके अंदर से कविता निकलती है, कैसी कविता निकलती है, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, लाइक ए डायमंड, फिर गलती भूल जाता है, लिखते लिखते फिर लिखता है इन द स्काई, क्या लिखना चाहिए था, अबाउ द स्काई। तो ये चार लाइनें इस तरह से उसने बनाई थी, यहां से 461 साल पहले लगभग बनी थी, और इसमें फिर 1806 में दो बहनें थी, किम टेलर और जेन टेलर, लंदन में, उन्होंने 12 लाइनें इसमें और जोड़ दी, इसमें चार लाइन तो थी, 12 लाइनों जोड़ जोड़ के इसको नर्सी राइम बना दिया। तो 1806 में से शुरू हुआ नर्सी राइम के रूप में। तो इस चार लाइन में भी देखो कितना अच्छा सुंदर संदेश मिला हुआ है, मेरे को भी पता नहीं था, मेरे को भी 2007 में पता लगा, है ना, मैंने एक पढ़ा कहीं पर, तब मुझे पता लगा ये नर्सी राइम का ओरिजिन कैसे शुरू हुआ था, तब भी मुझे समझ में आया कि तब हालांकि हम बचपन से गा रहे थे, मैं पता नहीं था। तो ये जो है इसमें भी हमें संदेश मिलता है कि ट्रुथ जो है वो एक यहां शाइनिंग स्टार है, और कैसे वो आत्मा सारे शरीर को चला रही है। तो इस सत्य को रियलाइज कर लेने के बाद आज का इंसान कैसा है मुझे बताओ, आज सब आपके आपके पास सब कुछ है या नहीं है, हम पढ़े लिखे भी हैं, पैसा भी है, कार भी है, है ना, बैंक बैलेंस भी है ना, सब कुछ है हमारे पास, समझ भी है, पर क्या हम खुश हैं, आप क्या समझते हैं, आर बी हैप्पी, आर बी सेटिस्फाइड, बताइए। क्या हमारे जीवन में शांति है, सेटिस्फाइड नहीं इसलिए यहां है, तो हम क्यों नहीं है। आज देखिए पति पत्नी होते हैं और वो दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों के दोनों आईएएस हैं, दोनों के दोनों डॉक्टर्स हैं, और उसके बाद भी वो आपस में एक दूसरे से उम्मीद क्यों नहीं रहते हैं, आपस में प्यार, दोनों पढ़े लिखे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं, हस्बैंड कार्डियोलॉजिस्ट है, वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है ना, दोनों एमडीज हैं, दोनों एक डीएम है, एक एमडी है, दोनों एक प्लास्टिक सर्जन है और एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, अपने पेशेंट्स के लिए बहुत कीमती है। फिर तो जब आपस में मिलते हैं, आपस में घर में आते हैं तो क्या होता है, हा? क्या करें, विचार नहीं मिलते, और जहां विचार नहीं मिलते वहां क्या होता है? हम बनते तो जीवन साथी हैं, शादी किस लिए करते हैं? मेरे जीवन साथी नहीं, ऐसे कहते ना, मेरे जीवन साथी, पर बन क्या जाते हैं? आप सभी अनुभवी हैं, क्या बन जाते हैं? जीवन साथी की वजह क्या बन जाते हैं? जीवन हाथी बन जाते हैं ना, हाथी मेरे साथी बन जाते हैं ना, नहीं बन जाते? क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाइट इज हैपनिंग लाइक दिस? ईगो। फिर ईगो, ईगो मतलब ईगो किसके साथ? किसके साथ ईगो? किसके साथ? जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, किसके साथ? किन के साथ हम बिहेव कर रहे हैं? किन के साथ हम चाहते हैं? हम कार्य करना चाहते हैं, हम सुख से रहना चाहते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे कुछ क्वेश्चन मेरे लाइफ में आते थे। मैं छोटा सा था तभी, मैं स्कूल में ही था, तो मेरे को अंदर से आता था कि ऐसे से क्यों, समाज में ऐसा क्यों है? हम सबके साथ ऐसे रहना चाहते हैं पर ऐसा क्यों है? हम समझदार भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, घरों में देखते थे हम लोग, परेशानियां देखते थे लोगों की, टेंशन देखते थे। मैं सोचता ये सब क्या है, व्हाट इज दिस? इसलिए मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। मैं स्कूल से आके हमारे पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था, हमारे घर के दिल्ली में ही रहते थे, तो वहां पर मैं वहीं निकल जाता, आराम से वहां जाके बैठ जाता। एक नाला था, वो नाले के ऊपर पुलिया बनी हुई थी, वहां जाके बैठ जाता और वहां घंटों बैठा रहता। पढ़ाई में मैं हमेशा अव्वल रहा, अव्वल माना हमेशा ही टॉप करता रहा। मैं 2 महीने की छुट्टियों में सब सब्जेक्ट पूरे कर लेता था, तैयारी कर लेता था पूरे, मुझे हर चीज रट जाती थी। मेरी मेमोरी फोटोजेनिक थी, फोटोजेनिक माना एक बार जो चीज मैं देख लूं, मुझे बस किताब का पेज नंबर के साथ कौन सी लाइन में क्या बात है मुझे पता लग जाती थी। कभी मुझसे टीचर पूछते थे, मैं पेज नंबर के साथ लाइन के साथ बता देता था, यहां पर ये चीज लिखी हुई है। तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, किंतु मेरे को फिर भी जीवन में ऐसा लगता था कि नहीं, जीवन क्या है, व्हाट इज दिस? मैं बचपन से पढ़ता था स्वामी योगानंदा की किताबें, रामतीर्थ की किताबें पढ़ता था। मेरे फादर भी बहुत ही इंटरेस्टेड थे योग मेडिटेशन में, तो पढ़ता था, किंतु उसके बाद मुझे शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने शिवानंदा का ना योग शुरू किया, वो अहम ब्रह्मास्मि ना, आई एम द ऑल प्रवेडिंग लाइट इन द यूनिवर्स, मैं बैठ के घंटों घंटों करता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ सत्य साई बाबा की तरफ गया, राधा स्वामी की तरफ गया, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था भगवान कहाँ है, वेयर इज गॉड, मेरे रियल लाइफ का लक्ष्य क्या है, मैं ही सोचता था हमेशा ही। और मैं जब MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद मैंने कहा चलो मैं IAS की तैयारी, कुछ मेरे साथी थे IAS की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी IAS की तैयारी की। मैं साइकोलॉजी एज सब्जेक्ट लिया, उसमें कुछ ना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो साइकोलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया। तो मेरे को तब से साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हो गया। मैं साइकोलॉजी माना एक इंसान को कैसे, हमारे अंदर ऐसा क्या परिवर्तन होता है हमारे जीवन में, हमारे विचारों में क्या परिवर्तन से हमारी, तो मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया, मेरा IAS में पास कर लिया, बट मैं ज्वाइन नहीं किया IAS। तो उसके बाद मेरे को ये लगता था साइकोलॉजी पढ़ने का और ज्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, पेशेंट केयर में इंटरेस्ट बढ़ा। मैं देखता था लोग बीमार होते हैं, बार बार बीमार होते हैं, और वो फिर बार बार बीमार होकर आते हैं, वही पेशेंट बार बार बीमार होकर आता है। फिर मैं उनके साथ बैठता था रात में, शाम के टाइम नाइट ड्यूटी होती ना कभी कभी, तो उससे बैठता था, उनकी मन की बातें सुनता था, उसके पीछे कॉज क्या है उसकी बीमारी के पीछे, तो समझ में आता था। उनकी बीमारी सुनने से उसको बताता, नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो पेशेंट सदा के लिए ठीक हो, काफी ठीक हो, मतलब उसको बार बार आना बंद हो जाता था, नॉर्मल हो जाते थे पेशेंट। तो पीछे कैसे हमारी साइकोलॉजी कैसे बनती है, ये जल्दी चिंता गुस्सा हमारे अंदर क्यों आता है, तो मैं इसका बहुत गहन अध्ययन करने की कोशिश करता था, बहुत समझने की, बहुत गहराई से लेटेस्ट रिसर्च के बारे में सोचता था, क्या क्या रिसर्च हो रही है माइंड के ऊपर, क्या रिसर्च हो रही है, क्या माइंड बॉडी के बारे में कुछ रिसर्च हो रही है, कि हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि ऐसे क्यूरियोसिटी में दिखता था कि कैसे कैसे मुझे हो। फिर जो क्या हुआ कि फिर मैंने देखा कि हम जब एक बार हम लोग, मैं एम्स में था दिल्ली में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में था, अच्छा मैं शादी करना नहीं चाहता था, तो मैं थोड़ी बात आपको अपनी इसलिए बता रहा हूं ताकि कि कैसे मेरे अंदर, कैसे मेरे जैसे आम, जैसे आपका आपका जीवन है, आपके जीवन में भी आप भी कुछ सत्य की खोज में होंगे। हर आदमी जब जीवन से थक जाता है ना, देखता है ना घर में, दुनिया में देखता है, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं नहीं, व्हाट इज द ट्रूथ? मैंने इतना पढ़ लिया, इतना लिख लिया, इतना समझदार हो गया, इतनी मैंने सब कुछ हो गया, तो भी मैं सुख, तो भी मेरे को खुशी क्यों नहीं है, तो भी मैं शांत क्यों नहीं हूं, तो भी मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही है, तुम्हें ऐसे आराम से क्यों नहीं दे सकता हूं? क्यों नहीं मैं जैसे गीता ना, छोटा सा फिल्म का गीता ना, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन। वो दिल क्या चीज है? ये दिल है कि कुछ और दिल है? व्हाट इज दैट हार्ट? व्हाट इज दैट जिस दिल की हम बात किससे कहानियों में करते हैं, गजलों में करते हैं, शेर शेर, वो कौन सा दिल है? किस दिल की हम, इस दिल की थोड़ी ना बात कर सकते हैं। तो फिजिकल हमने बहुत काट के देखे हुए है ना, ये तो बहुत सारे देखे हैं। तो ये दिल की बात थोड़ी ना, इस दिल में थोड़ी ना कोई रह सकता है? रह सकता है क्या? इसमें चार चैंबर है, इसमें चारों में खून भरा हुआ है, 70 बार धड़कता है, गुस्सा करो तो 100 बार धड़कता है, अगर वो अंदर रहने भी लगे तो उसको 100 बार तो अंदर बाहर होना पड़ेगा नहीं? तो आप सोचो इसमें कोई रह सकता है क्या? इस दिल में रह सकता है? हालांकि हमारी जब भी कोई बात दिल की होता है, दिल इसी पे हाथ जाता है, नेचुरल इस पे आता। ये दिल है क्या? वो वाला दिल, दिल्ली तो है, दिल मानता, दिल है कि मानता नहीं, दिल एक मंदिर है। ये मंदिर है क्या? मंदिर है, ये तो एक पंप है ना? नहीं, पंप है कि इसमें कोई मंदिर है? इसमें तो कोई मूर्ति, मैंने इतने दिल कम से कम 100 दिल तो मैंने काट के देखे होंगे कम से कम ना, क्योंकि मेरे को तो कहीं मंदिर नजर नहीं आया, कहीं तो कोई आदमी नजर नहीं आया, कोई इसमें कुछ नजर नहीं आया आज तक ना। तो ये दिल, ये मंदिर थोड़ी ना है, कौन सा मंदिर है? तो इसमें मैं काफी सारा पढ़ता था, मैं काफी सारा लिटरेचर पढ़ता था, बहुत लिटरेचर पढ़ता था, पर कहीं भी क्लैरिटी नहीं थी। तो बचपन से खोज करने की वो थी ना, तो मैंने वाइफ, मेरी शादी करने की इच्छा नहीं थी। हम गुप्ताज है ना, गुप्ताज मीन्स अग्रवाल गुप्ताज होते हैं, तो हमारे यहाँ शादी, हमारे यहाँ डॉक्टर बन जाए तो क्या होता है, फिर बहुत रिश्ते आने लगते हैं ना, तो हमारे यहाँ बहुत रिश्ते, मैं अवॉइड करता था कि शादी मुझे करनी नहीं है। फिर मेरे फादर ने कहा एक दिन, बेटा देखो तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो फिर छोड़ के भाग जाओ तुम घर, कहीं और चले जाओ, ठीक है? तो मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे घर में तो लोग आएंगे पूछने के लिए, तो अपने हिसाब से कोई लड़की देखिए, आप शादी कर लो। तो फिर जब मैंने पहली लड़की देखी, तो मैंने उनसे यही कहा कि देखो मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान को पाना, सत्य को जानना, ट्रुथ को समझना। तो उनका भी ऐसा ही था कि उन्होंने कहा नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य, मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मेरे को इच्छा थी मैं कुछ मतलब प्रचारक बनूं, आरएसएस के ना, वो आरएसएस के थे ना, तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा ऐसी थी कि मैं लोगों को संदेश दूं, देश में जागृति का कुछ ऐसे संदेश दूं, लोगों को जगाऊं ना, लोग जहां सोए पड़े हैं, मैं भी भगवान को मेरे जीवन का। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हमारी बन सकती है ना लाइफ, एक पटरी पर चल सकते हैं। तो फिर हमारे जीवन में जब एम्स में मैं आ गया, एम्स में हम आ गए, तो एम्स में हम लोग एक दिन फिल्म देखने जा रहे थे, नगीना नाम की एक फिल्म थी, ऋषि कपूर और श्रीदेवी की है ना। हम एम्स में रहते थे, एम्स के क्रॉस या एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स में ना, दिल्ली में से कुछ रहने वाले हैं यहाँ पर, दिल्ली में जो रहते थे, देखा आपने एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स? देखा ना, एम्स है बीच में, इधर एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स है जहां पहले 1982 में एशियाड गेम्स हुए थे। तो वहां पर ही हमें आयुर्विज्ञान नगर था, एक एम्स की मैंने डॉक्टर्स के लिए कॉलोनी बनी हुई थी, तो वहां पे हमें फ्लैट मिला हुआ था, हम वहां रहते थे। और एम्स बीच में था, इसके पल्ली तरफ उपहार सिनेमा था जो बाद में जल गया है, खेलगांव, उधर पल्ली तरफ उपहार सिनेमा था, वो जल गया। तो हम लोग ऐसे जा रहे थे, तो रास्ते में एक ब्रह्मा कुमारी का आश्रम था, उस पर लिखा था गेटवे टू हेवन लिखा हुआ था, और उसके उस पर गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल म्यूजियम लिखा हुआ था। तो मैं स्कूटर पे चला रहा था, बेटा मेरा आगे खड़ा था, 1.5 साल का था लगभग, और वाइफ पीछे बैठी स्कूटर पे। तो उन्होंने कहा देखो ये लिखा है गेटवे टू हेवन, आप स्कूटर रोको। मैंने कहा अभी टाइम हो गया फिल्म का, अभी तो जाना है। कहती हुई देखो क्या लिखा है गेटवे टू हेवन, वो तो गेटवे टू हेल है जहां पर आप मुझे लेके जाते हैं ना, ये तो गेटवे टू हेवन है, इसमें जाके देखते हैं यहां पर क्या है। मैंने कहा नहीं, हम तो अंदर नहीं जाते, हटाई टिकट है ना हमारे पास। तो हम कभी शनिवार को कभी कभी जाते थे, मतलब शनिवार को, सेकंड सैटरडे हमारा आधा दिन ऑफ होता था, बाकी तो मैं सुबह 7 बजे जाता था, रात को 2 बजे आता था अपने घर वापस। इतना लगभग वहां पे इतनी देर काम करना पड़ता था, ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे एम्स में हमारी इतनी, क्योंकि मैं उसमें वहां एमडी कर रहा था, बहुत काम, दिन रात काम करना पड़ता था। तो पर उनके कहने पर मुझे जाना ही पड़ा था ना। हम लोग अंदर गए तो समझा, हमने जाकर के जैसे ना अंदर से हमें आवाज आ रही थी कि दिस इज द ट्रूथ, यही सत्य है। और जब पहला चित्र हमने देखा, यही वाला देखा, आपने भी देखा होगा कभी सेंटर में गए देखा होगा, एक इंसान बनाया हुआ है, एक आदमी, बीच में आत्मा, और एक वो है स्केलेटन है, मतलब पुतला है, बीच में आत्मा, और फिर ये। तो एक इंसान क्या है, एक शरीर और आत्मा का मिश्रण है, दोनों से मिलके बना है, उसमें से मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? तो ये मैं देह हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं मिट्टी हूं कि मैं उसमें जीवित जीवित जीवनी शक्ति हूं, क्या हूं? ये बोलने वाला कौन है? मैं बोलने वाला कौन है? मेरा बोलने वाला कौन है? तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और बहुत साइंटिफिक भी लगा। और आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, मन सोचने की शक्ति, बुद्धि निर्णय करने की शक्ति, और संस्कार। जो भी हम कर्म करते हैं बार बार, कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, हाथ पैर से कर्म करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। वो जो रिकॉर्ड बार बार रिकॉर्ड होता है, वो हमारी आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है। और संस्कार बनने के बाद फिर हमारी निर्णय शक्ति प्रभावित हो जाती है, जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। एक बार संस्कार आदत बन गई, फिर वो जो है हमारे अंदर वो परिवर्तन फिर बुद्धि का काम नहीं रहता है। जैसे कोई स्मोकिंग करने की इसको आदत पड़ गई, तो स्मोकिंग करने वाला स्मोकिंग करता ही रहेगा। उस पर लिखा है ये इससे कैंसर हो जाता है, किंतु फिर भी वो समझ नहीं आती उसको, फिर वो चुपचाप पी लेता है। हाथ अपने आप सिगरेट पे पहुंच जाते हैं, लाइटर जल जाता है और सिगरेट पी लेता है। गुस्सा करने वाले को पता है गुस्सा करना खतरनाक है, इससे हार्ट अटैक आता है, इससे और बीमारियां होती हैं, किंतु फिर भी गुस्सा करने वाला बार बार गुस्सा करता ही रहता है, नहीं करता है? जल्दीबाजी करने वाला जल्दी करता ही रहता है, नहीं? चिंता करने वाले आदमी को चिंता होती रहती है, रोने वाले व्यक्ति को रोना आता ही रहता है, नहीं? बात बात पे रोना आता ही रहता है। जो सेंसिटिव आदमी होता है, इमोशनल होता है, वो सेंसिटिव इमोशनल अपने आप हो जाता है, नहीं हो जाता है? या होना पड़ता है? बुद्धि काम नहीं करती, पता है कि रोने से कुछ होगा नहीं, कहीं मर जाता है कोई, मर जाता है तो रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्या मरने से हमारे रोने से वापस आ जाएगा? क्या उसको सुख मिलेगा हमारे रोने से, जहां पर हम रो रहे हैं? तो ये बड़ी मुझे बड़ी अजीब सी बातें लगती थी, बड़ी अजीब, मतलब तो इसका रीजन क्या था? तो मेरे को समझ आया वहां जाकर। आत्मा के सात गुण हैं, आत्मा के अंदर सात एनर्जी हैं, जो कि शरीर की हर हर बॉडी के अंग को नरिश कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा साइंटिफिक लगा, मुझे अच्छा समझ में आया। और फिर जैसे मुझे कैसे आत्मा सात एनर्जी शरीर को चला रही है, और परमात्मा सात एनर्जी का सागर कैसे है, कैसे वो सातों एनर्जी का सागर, मतलब वो पावर हाउस है। जब आत्मा की, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम पावर हाउस में लगाते हैं ना, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ऐसे ही हम आत्मा की बैटरी जब डिस्चार्ज हो गई, जब आत्मा के पास सात एनर्जी है, आत्मा शरीर को चला रही है, सातों अंगों में एनर्जी जा रही है, आठों अंगों में एनर्जी जा रही है, परफेक्ट काम कर रहे हैं। एक अंग हार्ट मेरा बीमार क्यों हो गया, या मेरा लीवर खराब क्यों हो गया, मेरा पेट खराब क्यों हो गया, मेरी कमर की हड्डी खराब क्यों हो गई, मेरे घुटने खराब क्यों हो गए? एक विशेष एनर्जी उस अंग के लिए आवश्यक है, वो एनर्जी कम हो गई तो अंग खराब हो गया। उस अंग को वो एनर्जी मिल जाए तो वो एनर्जी दोबारा से अंग वो दोबारा काम करना शुरू कर देता है। तो मेरे को ये चीजें थोड़ी थोड़ी बातें, तो मन बुद्धि संस्कार का सिस्टम, आत्मा कैसे सात एनर्जी से ला रही है, और बीमारी क्यों होती है, डिस ईज शब्द क्या है, डिस ईज, डिजीज शब्द कहते हैं ना वैसे, रियल वर्ड का डिस ईज मतलब लॉस ऑफ ईज, शांति खत्म हो गई, अंदर की शांति खत्म, उस अंग में सेल्स के अंदर शांति खत्म हो गई। हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है, वो एनर्जी आत्मा की एनर्जी कैसे बॉडी के अंदर आती है, वो सारी कुछ कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, मतलब उसमें से, और मुझे लगा नहीं दिस इज द ट्रूथ। मेरा मन साइंटिफिक था, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काम करते थे वहां पे एम्स, जिससे टेररिस्ट होते ना, आतंकवादी होते ना, ऐसे हम लोग एम्स में, हमें बनाया जा सिखाया जाता हार्ड कोर साइंटिस्ट बनना, हार्ड कोर साइंटिस्ट, हार्ड कोर टेररिस्ट होते ना जैसे, हम लोग हर बात में लॉजिक चाहिए होता था हमको। हम लोग जो ट्रेनिंग होती है वो मतलब वी वांट टू सी थिंग्स, वी वांट टू बी लॉजिकल, है ना, हमारे बात में लॉजिक चाहिए। तो मेरे लॉजिक को, साइंटिफिक माइंड को संतुष्ट किया इस बात ने कि आत्मा कैसे है। और कोई हाथ जोड़ते ना, हम किसी का हाथ जोड़ते थे, अच्छा आरती, हम बचपन छोटे बच्चे थे ना जब, हम तो हमारी माता जी ना वो सुबह सुबह आरती होती ना, घर में आरती करते थे ना, जय जगदीश हरे, है ना, आती ना उसमें एक लाइन आती है, उसमें एक लाइन आती है, मैं हूं मैं मूर्ख खलकामी, एक आरती लाइन आती ना, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। तो मैं, मेरे सबके सब आरती गाते थे हमारे घर में, माता पिता और हम 5-6-7 भाई बहने थे, तो सबके सब मम्मी सबको खड़ा कर देती थी, चलो सब आरती गाओ, है ना, तो हम सब गाते थे। मैं जब लाइन आती मैं मूर्ख करके, मैं गाता नहीं था, वो मैं बोलता नहीं था, तो मम्मी कहती तुम क्यों नहीं बोलता बीच में, लाइन क्यों नहीं बोलते हो? तो मैंने कहा मम्मी मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो क्लास में फर्स्ट आता हूं, मैं तो खल नहीं हूं, है ना, मैं तो दुष्ट नहीं हूं, मैं तो कामी नहीं हूं, तो मैं क्यों बोलूं, है ना। तो मेरे को लगता था ऐसे। फिर हनुमान के बारे में जो बहुत कंफ्यूजन होता था कि हनुमान जी, हनुमान छोटा कैसे बन गया, सुरसा के गीत रामायण पढ़ी ना हमने, इतना छोटा सा कैसे बन गया, इतना बड़ा कैसे हो गया, ऐसा कौन सा हार्मोन लेता था इंजेक्शन जिससे वो कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता था। फिर गणेश जी के बारे में बड़ा कंफ्यूजन था मुझे, गणेश जी का क्या कंफ्यूजन था, गणेश जी में ऐसा था भाई अगर शंकर जी ने सिर काट दिया बच्चे का, उनको सिर काट दिया उसने, अब पार्वती आई, पार्वती ने कहा ये सिर क्यों काटा आपने, वापस लगाओ, तो सिर तो वहीं पड़ा था ना उसका गणेश जी का, तो उठा के लगा देना था नहीं, अगर मतलब साइंस बहुत एडवांस थी तो लगा वहीं उठा के लगा देते, अपने गणों को भेजा जाओ जंगल में जाओ हाथी का सिर ढूंढ के लाओ, एरावत का सिर लेके काट के लाओ, फिर हाथी का सिर लेके आए, फिर उसके सिर पे लगाया। मैंने कहा हनुमान ये शंकर जी क्या काम कर रहे हैं, मतलब ये हम ए ग्रुप वाले को बी ग्रुप का खून नहीं चढ़ा सकते, आदमी मर जाता है, यहां पे क्या काम शुरू कर दिया इन्होंने, मतलब कानून तो कोई कानून तो प्रकृति का कानून तो फॉलो करें ना, ये थोड़ा ना बच्चे के सिर पे हाथी का सिर लगा दोगे। तो मैंने बहन जी को ये बात पूछी, मैंने कहा मुझे ये मेरी ये टीचर बहन को मैंने ये बात कही, मैंने कहा ये मुझे बताया जरा कि ये क्या इसका सिस्टम है, एक तो हनुमान जी का जो है सिस्टम कैसे छोटा बड़ा होने का क्या सिस्टम है, गणेश का ये सिर काट के हाथी का क्यों लगाया उन्होंने, वो बच्चे का सिर तो वहीं पड़ा था ना, तो वहीं दूसरा वो उठा के क्यों लगा दिया है ना। तो फिर एक रावण की मुझे प्रॉब्लम होती थी कि रावण मेरे एक सिर को सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल है, 10 सिर हो तो आदमी कैसे सोएगा है ना, सोएगा कैसे, मैं तो हमेशा करवट लेके सोता हूं, रावण 10 सिर वाला कैसे सोएगा, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है सुनने समझने में ना। हैं जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाजू में कैसे जाते थे। तो मतलब ये मुझे कुछ क्वेश्चन मुझे, मैंने फिर उनसे पूछा बहन जी से, मैंने कहा अगर आप मुझे बता देंगे 3 क्वेश्चन का इलाज बता देंगे ना राइट आंसर, तो मैं समझूंगा ये ज्ञान सत्य है। बहन जी ने बहुत अच्छे समझा दिया मुझे कि हाँ ये ज्ञान इस तरह से। और बचपन में मैं हनुमान चालीसा बहुत पढ़ता, हमारे किसी ने कहा था हमारे नाना जी ने कि हनुमान चालीसा आप ना रोज 7 बार रिवाइज किया करो तो आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा ना। तो मैं अब बच्चा था समझ तो थी नहीं, स्कूल जाते 1.5 किलोमीटर मेरा स्कूल था, तो हम क्या करते थे कि हम लोग ना वहां पर जाते थे तो रास्ते में मतलब पैदल पैदल जाते थे, लगभग 20 मिनट लगते थे जाने में, तो हम भी रास्ते में 20 बार मतलब 7 बार मेरे को हनुमान चालीसा अंदर रिवाइज करनी होती थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, ऐसे आता ना, तो मेरे को इतना तेजी से अंदर रिवाइज करनी पड़ती है, हनुमान जी को समझ नहीं आती होगी क्या मैंने बोला पर 7 बार स्कूल की लाइन में घुसने से एंटर करने 7 बार उसको रिवाइज करना जरूरी था। मतलब बिलीफ सिस्टम कैसे थे हमारे, तो जब मेरे को क्लैरिटी आई तब पहले डर की वजह से करते थे है ना हनुमान, मुझे ये भी लगता था हनुमान वो कहते हैं ना मंगलवार को, मेरी मम्मी कहती बेटा मंगलवार को सिर बाल नहीं कटवाना, तो मैंने कहा हनुमान जी क्या प्रॉब्लम है मेरे बाल कटवाने से है ना, शुक्र तो वो क्या ऊपर से बैठ के ये देखते रहते कि ये बाल कटवाने जा रहा है, तो मेरे को मतलब मैं बता रहा हूं मैं तो कैसे आपके मन में शब्द नहीं आता हुआ, मेरे मन में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, फिर वो मम्मी कहती शुक्रवार को खटाई नहीं खानी चाहिए, संतोषी माता का दिन होता है ना तो खटाई नहीं खानी चाहिए, तो मैंने कहा संतोषी माता क्या प्रॉब्लम है खटाई खाने से, मेरी खटाई खाने से खटाई मैं खाऊं उसको क्या प्रॉब्लम हो रही, संतोषी माता नाम है संतोष से रहे ना तो उसको क्या प्रॉब्लम है, मैं नींबू खाऊं या कुछ भी खाऊं अचार खाऊं कुछ भी खाऊं, तो मतलब मेरे को कोई काफी सारे कंफ्यूजन होते थे। फिर जब एक ज्ञान मिला पहली बार तो मेरे अंदर क्लैरिटी आई, मैं आत्मा हूं, कैसे मैं आत्मश्री को चला रही हूं और कैसे मेरे कर्म कैसे क्या हो सिस्टम है, जब समझ में आ गई then I started using it, जो मेरे अंदर आदत पड़ गई थी जल्दी, मैं भी बहुत टाइप ए नेचर का इंसान बन गया था परफेक्शनिस्ट, प्रेशर ऑफ टाइम प्रेशर ऑफ वर्क प्रेशर ऑफ परफेक्शन, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, नंबर वन मुझे क्लास में नंबर वन आना ही चाहिए, पूरे जोन में मेरा नंबर वन आना चाहिए, दिल्ली में पूरा नंबर वन मेरे को होना चाहिए, कोई मुझसे आगे नहीं बढ़े, एंजाइटी बहुत ज्यादा है ना, सेंसिटिव बहुत ज्यादा है ना, मतलब मेरी नेचर थी ऐसे तरह की नेचर बन गई थी जो मैं खुद ही परेशान होता था अपने आप से, स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में बहुत परेशान होता था, क्योंकि आदमी को मतलब आफ्टर ऑल कितना भी परफेक्शन कर ले कितना भी बड़ा बन जाए, आप भी सभी परफेक्शनिस्ट हैं मैं जानता हूं है ना, एक्यूरेसी हर चीज में हर एक लाइफ में एंजाइटी भी होती है फियर भी होता है, कहां से पैदा होता है, तो मैं सोचता था कि लाइफ में क्या मतलब, मैं डॉक्टर भी बन गया सब कुछ बन गया अगर मेरी लाइफ में एंजाइटी रहेगी प्रेशर्स रहेंगे तो आई कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर, तो मैं अंदर सोचता रहता था। फिर जब मुझे ज्ञान मिल गया आत्मा आप आत्मा है और आत्मा की 3 शक्तियां मन बुद्धि संस्कार है, और आत्मा के पास 7 एनर्जी है जिससे आत्मा शरीर को चला रही है। और आत्मा के मैं थोड़ी सी बातें आपको समझाता हूं बोर्ड पर, ताकि आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। जैसे आत्मा के जो सबसे बड़ी बात तो मन जो है ना, जो मन है, कैसे हमारे अंदर जल्दी चिंता गुस्सा आया क्यों, और कैसे हम उसको विक्टोरियस, कैसे उस पर विक्ट्री प्राप्त करें, ये मेरी मेन बात समझने की है। जैसे हम मन के चार, मन में 4 आस्पेक्ट हैं, उसे हम टीम कहते हैं, टीम है ना। मन में खाली सोचने की शक्ति मन नहीं है, मन में 4 बातें हैं। एक तो टीम माना टी फॉर थॉट्स। कोई भी हम चीज देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं या टच करते हैं, ठंडी गर्म हवा चलती है तो हमारे मन में विचार उठता है, राइट। और कई बार विचार, एक तो विचार हमारे बाहर से उठता है, मतलब हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट से उठता है। दूसरा विचार कहां से उठ सकता है, कई बार कोई हमारे अंदर कोई मेमोरी, अचानक बैठे बैठे कोई पुरानी बात याद आ जाती है, वहां से भी जैसे एक साफ पानी की झील होती है ना, साफ पानी की झील में लहरें कैसे उठ सकती हैं, या तो पत्थर मारे बाहर से, या कभी कभी क्या होता है पूर्णमासी के दिन क्या होता है, ज्वार उठता है ना। तो ऐसे ही हमारे मन में भी विचार उठते हैं। तो विचार, विचार एक बिंदु है। विचार और भावना में क्या फर्क, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर मेमोरीज। विचार और भावना में क्या फर्क है, एनीवन? विचार और भावना में क्या फर्क है? विचार, विचार थॉट्स और इमोशंस में क्या फर्क है? इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस, इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। कोई भी विचार हम गहराई से करते हैं, बार बार करते हैं, तो क्या बन जाता है, इमोशन, वो क्या बन जाती है, भावना। जैसे मैंने कोई, मैंने संबंधों में होता है, मां और बेटे के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, भाई और भाई के बीच में, भाई और बहन के बीच में, नहीं संबंधों में, क्योंकि उनके बारे में हम ज्यादा विचार करते हैं। कुछ भी होता है तो हम उसके बारे ज्यादा विचार करते हैं। जैसे तो अगर मैंने कि एक माँ है, उसको अपने बच्चे का बार बार विचार आ रहा है, ठीक है, और ये इसका बेटा है, ये यूएस में रहता है, कैलिफोर्निया में रहता है, भले दूर रहते हैं, 20,000 किलोमीटर दूर रहते हैं एक दूसरे से, किंतु क्या चलेगा उनके अंदर, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति विचार चलेंगे जो एक दूसरे को टच होंगे। इसको कहते हैं वाइब्रेशंस। क्या कहते हैं? वाइब्रेशंस। इसको टेलीपैथी भी कहते हैं। हम, हमारी बात यहां से वहां तक कितना भी दूर हो पहुंच जाती है। जैसे बच्चा सोच रहा मां के बारे में और मां उसको फोन कर देती है, तो बच्चा क्या बोलता है, मम्मी आपके बारे सोच रहा था मैं, अभी आपकी याद आ रही थी, है ना, मैं आपको, आपको फोन करने वाला ही था। और बच्चा कई बार मां का, मां के बच्चा फोन करता है मां को, तो मां क्या कहती है, मैं तेरे बारे ही सोच रही थी अभी, है ना? नहीं होता है, बच्चे कुछ होता है मां को, यहां कुछ होता है, मां को कुछ होता है बच्चे को, वहां कुछ होता है, पता लग जाता है, राइट। ये पावर ऑफ, इसको दुआएं भी कहते हैं, वाइब्रेशन, बददुआएं भी कहते हैं। तो हमारा जैसा विचार एक दूसरे के प्रति चलता है, जिससे हम कनेक्टेड होते हैं, वो विचार हमारे ऊपर एक दूसरे पे, इसको पावर ऑफ वाइब्रेशन, टेलीपैथी भी कहते हैं, वो दूर तक असर करते हैं। भले आप यहां पर हैं, इंडिया में हैं, अगर आपने किसी का कोई नुकसान किया, वो व्यक्ति आज छोड़ करके आपको अमेरिका चला गया, या कनाडा चला गया, या किसी देश में चला गया, तो वहां से भी उसकी, अगर आपने सुख दिया तो वहां से भी उसकी वाइब्रेशन आपको मदद करेंगे। अगर आपने उसको नुकसान किया तो व्यक्ति वहां से भी आपको डैमेज करेगा, राइट। इसलिए क्या कहते हैं, दुआएं, कहीं का काम किया हुआ किसी की दुआएं लग गई ना, या किसी की बददुआ लग रही है, ऐसे बोलते नहीं बोलते। तो ये जो है हमारे, जो हम कैसे हमारे आपस में बिहेवियर होते हैं, तो ऐसे हमारे जो है ये इमोशंस बन जाते हैं बार बार करने से, वही विचार बार बार करने से। और फिर जब हम वही उसी विचार को, जब हम इसी भावना को, व्हाट इज, तो विचार और भावना में क्या फर्क है, विचार इंटेंस थॉट्स, कोई विचार गहराई से बार बार करते हैं तो हमारी भावना में परिवर्तन हो जाता है। उस भावना को लंबा कर दें आप, उसी भावना को लंबा कर दीजिए, उसी भावना को मन में रखिए और कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ महीने रखिए, तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन गया, माना। अब इसमें पहला पॉइंट कौन सा है, आखिरी कौन सा है, हर एक पहला, हर एक आखिरी है, तो आप उसी सर्कल में घूमने लगे, आपके विचार उसी सर्कल में घूमने लगते हैं, तो एक वृत्त बन गया ना, सर्कल बन गया। तो इस सर्कल से क्या बनता है, एक आसपास वायुमंडल बन जाता है, एटमॉस्फेयर बन जाता है, इसको कहते हैं ऑरा। क्या कहते हैं, आभा मंडल, वायुमंडल। जैसे आप यहां आए, अभी आप किसी से मिले नहीं, आप आके ज्ञान स्वरूप में घुसते कैसा लगा, क्यों अच्छा लगा, किस चीज का एनवायरमेंट, ठंडी हवा, साफ सुथरा, बस यही अच्छा लगा। साफ सुथरी जगह तो बहुत सारी होती है। नहीं, विचार आपने अभी किसी को सुना ही नहीं, विचार नहीं, वो वायुमंडल, वायुमंडल में ऑरा, इस जगह पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके मन के विचार कैसे, उनकी भावना कैसी है, उनका आपके प्रति एटीट्यूड कैसा है, वृत्ति कैसी है, दृष्टिकोण कैसा है आपके प्रति। तो वो जो वायुमंडल में शांति, प्यार, खुशी, स्वागत, वेलकम की फीलिंग है ना, दुआएं, शुभ भावनाएं, वो आपको टच करती हैं, वो आपको अच्छी लगती है। दुनिया में क्या, जहां जाएंगे भले रिश्तेदारी में जाते हैं, बल्कि वहां कुछ ना कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनकी वृत्ति आपको टच होती है। किसी व्यक्ति को मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यों, किसी व्यक्ति को मिलकर अभी कभी मिले नहीं, पहली बार मिल रहे हैं, खराब सा लगता है, बड़ी अजीब सी लगता है, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, वाइब्रेशंस है ना। और वायुमंडल, तो यहां पर रहने वाले का वायुमंडल, फिर जब ये वायुमंडल में आप असर में आकर के फिर आप क्या करते हैं, फिर आपके अंदर अगर आप इसके असर में आके कोई काम करते हैं, तो एक बार आपने काम किया उसको हम इंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार काम किया, जैसे हम हार्ट का प्रोग्राम करते हैं ना, तो हम लोगों को पहले दिन हमारे पास आते हैं, सब लोग चाय पीने वाले होते हैं, हम लोग कहते हैं चाय नहीं पीने आएगा सर, आपको चाय नहीं मिलेगी। वो अपने घर में बहुत कोशिश, चाय हार्ट के लिए बहुत अच्छी, चाय हार्ट को नुकसान करती है, कॉफी भी हार्ट को नुकसान करती है ना, और खाली हार्ट को नहीं सारी बॉडी को नुकसान करती है। हम कहते हैं कल से आपको चाय कॉफी नहीं मिलेगी, कल से आप सिंपल पानी पियेंगे और नींबू पानी या सिंपल पानी पियेंगे और एक एक घूट करके पियेंगे, आराम से बैठ के पियेंगे घूट, तो आपका पेट साफ हो जाएगा। तो वो इनको क्या लगता है, जैसे वो उन्होंने हमारी बात को माना, चाय तो अवेलेबल होती नहीं हमारी यहाँ पर है ना, तो हमारी जो है वो नींबू पानी पीते हैं और पे करके उनका पेट साफ हो जाता है। तो एक क्या हुआ, इंप्रेशन, पहले क्या था किससे उनके, क्या था उनके अंदर इंप्रेशन, कि चाय पीने से पेट साफ होता है, ठीक है। अभी क्या हो गया कि हमने हमको इस एटमोसफेयर में जब हमने कहा नहीं आपको ये करना है ऐसे, तो बच्चे की तरह मान लेते हैं। घर में उनको कहा जाए कल चाय नहीं मिलेगी आपको, तो क्या होगा, झगड़ा करेंगे ना, क्योंकि हम लोग कभी चाय नहीं पीते, हम कभी कॉफी नहीं पीते, और प्लस हमारे दिल वाले भी जो पुराने हार्ट पेशेंट वो भी नहीं पीते हैं, जो भी सेवा में उनके आते हैं, तो वहां एक वायुमंडल है उस तरह का, तो वो लोग उससे बदल जाते हैं और वो इंप्रेशन उनको फील होता है। फिर मान लीजिए अब जैसे सुबह सुबह उठ के आते हैं, नहा धो के सब लोग क्लास में आ रहे होते हैं, तो क्या करेंगे, आपस में दूसरे से पूछते हैं, क्या पूछेंगे, आपने चाय पी सुबह, चाय तो थी नहीं है ना, तो पेट साफ हुआ, क्या कहते, हाँ मेरा तो साफ हो गया, अच्छा आपका क्या हुआ, मेरा भी साफ हो गया, आपका क्या हुआ, साफ हो गया। तो जब इसी इंप्रेशन को 10 लोग इसको री इन्फोर्स करते हैं तो क्या इसे क्या बनता है, इससे बिलीफ बनता है, क्या बनता है, बिलीफ ना अंधविश्वास। अब नया अंधविश्वास, पहले क्या अंधविश्वास था, बिना चाय के पेट साफ नहीं होगा, ठीक है, जबकि चाय से पेट का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, चाय पीने से और पेट का कनेक्शन कुछ है ही नहीं, राइट। ये एक अंधविश्वास हो गया था कि चाय पीने से पेट साफ होता है ना, और बिना पानी पीने से पेट साफ हो सकता है, सब पीने की क्या करना कि आपको एक एक घूट करके पीना है, सिप बाय सिप पीना है, क्योंकि छोटे जब पानी पियेंगे छोटी आंत में जाएगा, स्टमक में नहीं जाएगा, स्टमक में जाएगा तो उसका असर नहीं होगा, और जब ऐसे पी लेंगे लगातार तो पानी पेट में जाएगा, उसका असर नहीं होगा, तो अगर आपने सिप बाय सिप पिया तो छोटी आंत में जाएगा, उससे एकदम आंतों में मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो चाय से पेट साफ नहीं हो रहा, किससे साफ हो रहा है, पानी को सिप बाय सिप पिया, चाय की तरह पिया तो आपको पेट साफ हो जाएगा, है ना, तो बहुत नुकसान करती है। तो रीइन्फोर्स आप, तो इसको बिलीफ कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, भी आप कहते हैं ना, अब चूहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया, काम खराब हो जाएगा, अब बिल्ली का रास्ता काटने से हमारा क्या काम खराब होगा, बता होगा क्या, आज उसकी शक्ल देखी, काम खराब होगा, शक्ल तो तुमने अपनी 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 देखी थी उठते ही, उसकी क्या देखी थी, है ना, नहीं ऐसा किसे छींक मार रही, छींक स्नीजिंग हो गई उसको तो, और काम खराब हो जाएगा, अरे काम खराब उससे छींक उसको आ रही थी, तुम्हारा काम से क्या मतलब है उसको, पर ये अंधविश्वास है ना, अब ये अंधविश्वास कहां से बने? हमने माता पिता से सीखे, अपने टीचर से सीखे, अपने साथियों से। बचपन में गीत आपने पढ़ा होगा, बचपन में किताब काफी के पीछे लिखा रहता था। वो गीत कौन से थे? बच्चे मन के सच्चे, ये सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बचपन इन बातों से हटकर एक गीत है ना, जो जो इनकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे लालच की आदत घेरे। बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कोई भी ना जल्दी, जो आपके अंदर बातें हैं हमारे अंदर जो आते आ गई, जल्दी की, चिंता की, गुस्से की, उदासी की, ये हमारी नेचर नहीं है। हम सभी शांति में शांति के स्वभाव वाले हैं। सबसे प्यार छोटा बच्चा कैसा होता है? शांत, प्यार, खुशी, आनंद वाला होता है, नहीं होता है? हमेशा मुस्कुराता रहता है ना, शांत रहता है। ऐसा नहीं बुद्धू लगता है क्या बच्चा? लगता समझदार है, नहीं लगता समझदार? बुद्धू लगता है क्या? एक बच्चा छह महीने का बच्चा है, चार पांच महीने का बच्चा, बाप थका हुआ घर से घर आता है, उसको देखता है बच्चे को मुस्कुराते हुए, क्या होता है? सारी थकावट उतर जाती है। और वही बच्चा जब 35 साल का 30 साल का होता है, कुछ करता नहीं है, उल्टा सीधे काम करता है, बाप फ्रेश उठता है, एक्सरसाइज करके आता है, बच्चे को देख के वो टेंशन, उसको सारा थकावट हो जाता है, नहीं होता ऐसे? होता नहीं होता ऐसे? नहीं होता ऐसे? होता ना। तो बेसिकली क्या होता है कि ये कैसे हो रहा है? तो ये हमारे जो भी हमारे अंदर हमने एक्वायर किया, 4 से लेकर 11 साल की उम्र तक हमारी पैसिव फेज होती है, ओरल फेज ऑफ लाइफ होती है। इसमें हम माता पिता से, भाई बहनों में, टीचर्स में, बड़ों में जो भी चीज देखते हैं उसका हमारे पर असर हो जाता है, उसको हम, जिससे हम इंप्रेस हो जाते हैं, हमारे रिकॉर्ड हो जाती है। मैं आपको बताऊं कैसे हमारी योगी की लाइफ बनने में, कैसे हमारा योगी और वियोगी हम कैसे बनते हैं, अपने आप से कैसे कट जाते हैं। एक बच्चा योगी होता है, बच्चे को महात्मा भी कहा जाता है ना, तो वो बच्चा कैसे महात्मा से कैसे बड़ा होते होते 11 साल की उम्र तो उसकी नेचर बदल जाती है। बच्चे को सांप से डर लगता है क्या? मेंढक से डर लगता है? अंधेरे से डर लगता है? बिजली के कनेक्शन से डर लगता है? उसको पेशाब करता है गंदा लगता है क्या पेशाब? उसको कितने मजे से खेलता है पेशाब करके, उसी में खेलता है, नहीं खेलता है? देखा होगा कभी खेलते हुए ना, उसको मजा आता है। मेंढक को पकड़ लेता है, सांप को भी पकड़ लेगा। उसके मां बाप सिखाते हैं, बेटा ये गंदा है, छिछी है ना, सांप को दिखाएंगे ये कैसे कहे, मतलब काट लेगा, मर जाओगे, बिजली का करंट है इसमें। मां बाप सिखाते हैं, अंधेरे में क्या होते हैं, भूत होते हैं, है ना, साधु बाबा है ना, इसके झोले में बच्चे बैठा के ले जाते हैं, है ना। तो सारी बातें हम सिखाते हैं बच्चों को, नहीं सिखाते हैं? अब देखा बच्चा है, छोटा बच्चा 4 साल का है, देख रहा है घर में 3-4 भाई हैं, बहने हैं, और वो मां बोल रहे कुछ काम करेंगे, पिताजी ने गुस्सा किया, सबने काम करना शुरू कर लिया। बच्चे के मन में क्या इंप्रेशन आया? गुस्सा करने से काम होता है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करने से काम जल्दी होता है। टीचर को देखा, टीचर आता है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, टीचर आया, उसने डंडा दो लोगों को पिटाई करी, सब सीधे सीधे होकर बैठ गए, है ना। गुस्से से काम ऐसा होता, इस तरह से होता है। लेकिन देखा माँ पिताजी भी गुस्सा कर रहे हैं, माँ ने रोके दिखाया, पिताजी भी उसको चुप कराने में लग गए, तो गुस्सा रोने से भी काम ठीक होता है ना। तो इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, तो इस तरह से हमारी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बनती है, समझ रहे मेरी बात। तो ये पर्सनैलिटी 11 साल की उम्र तक बन जाती है। तो जो भी आपको बीमारी होती हैं, शरीर में बीमारियां होती हैं, मन की बीमारियां, डिप्रेशन होता है, आप अपने मन की बातें शेयर नहीं करते, जल्दी चिंता गुस्सा की आदत पड़ गई है, उदासी की आदत पड़ गई, सेंसिटिव नेचर बन गई, थोड़ी थोड़ी बात फील कर लेते हैं, सोचते रहते हैं, ये क्यों, कहां से बनी? 11 साल की उम्र तक जो कुछ आपने देखा, घर में देखा, बाहर देखा, ये बन गई। ओरिजिनल नेचर हमारी ऐसी नहीं थी। आत्मा जो है तो ये बन गया, ये देखा आपने, और जब हमने बार बार किया, रिपीटेडली किया तो हमारे संस्कार बन गए। इसको हम संस्कार कहते हैं, इसको हम आदत कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि हमारी जो आदतें हैं, जो भी हमारी आदतें बनी हैं, जिसको हम विकार कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, जो बनाए वो हम लेकर के नहीं आए थे, हमने कहां से बनाया? ऐसे बना है, अपने को देह समझा है, देह के विचार उठते हैं, हमने अपने आप को रोल समझा है, वैसे विचार उठते हैं, वैसी भावनाएं बन गई हैं और वैसी वाइब्रेशंस बन गए हैं और वैसा ही हमारा ऑरा बन गया है, वैसे ही हमारे इंप्रेशंस बन गए हैं, वैसे ही हमारे बिलीफ सिस्टम्स बन गए हैं और वैसे ही हमारे आदतें बन गई। उससे हमारे जीवन में अशांति आई है, उससे हमारे जीवन में परेशानी आई है, उससे हमारे जीवन में दुख आया है, उससे हमारे जीवन में क्या है झगड़े आए हैं, उसी से हमारे जीवन में क्या ये है ना कंफ्लिक्ट्स पैदा हुए, जो भी हुआ हमारे जीवन में परेशानियां जो हुई, हमने अपने उद्देश्य समझने से, असत्य को असत्य समझने से, असत्य को सत्य समझने से, रॉन्ग को राइट समझने से हुआ। इसलिए मेडिटेशन क्या है, योगी क्या है, योग माना रियलाइजिंग द ट्रूथ। इसकी बजाय हम अपने आप को स्पिरिचुअल बना लें, मैं आत्मा हूं, मेरी पत्नी आत्मा है, मेरा बेटा भी आत्मा है, भले हम एक घर में पैदा एक घर में हैं, एक दूसरे के साथ हैं, किंतु हम अलग अलग आत्माएं हैं और हमारा पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है। उसके मेरे को अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, या मैं ऑफिस में काम करता हूं, मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, जहां पर भी मैं हूं, ये मेरा उन आत्माओं से पिछले जन्म का कर्मों का हिसाब किताब है। वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा फर्ज है, वो मेरा बंधन है, संबंध नहीं है, राइट? वो मुझे क्या करना है, मुझे उसको निभाना है। तो जब हम ये बात को समझ जाएं, है ना, तो हमें जो है क्या होगा, तब हम अच्छे से निभा पाएंगे इसको। अगर हमें समझ जाएं, मैं हमेशा कहता हूं जो ज्ञान है ना, नॉलेज, ज्ञान या सत्य की समझ, उसको सार रूप में तीन ABCD के नाम से कहता हूं, जो आपने कल भी सुना होगा, शाम को भी लेक्चर हुआ होगा। ABCD, A फॉर आत्मा, आई एम ए बीइंग, ह्यूमन बीइंग है ना, आई एम ए बीइंग, मैं शाइनिंग स्टार हूं, मैं उच्च आत्मा से सात एनर्जी निकल रही है और सारे शरीर को नरिश कर रहे हैं, एक एक सेल को नरिश कर रहे हैं, 80,000 अरब कोशिकाओं से मेरे बॉडी बनी हुई है। और जो आत्मा है उसके पास तीन शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार, मन सोचने की शक्ति, टीम, मन माना टीम। अगर मेरी टीम पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, मैं जीवन, मेरा जीवन में रोज मेरे को कितने 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 मैच खेलने पड़ते हैं, पत्नी से पति से बात करना, या पत्नी से बात करना भी मैच है कि नहीं है, अपने बच्चे से बात करना मैच है कि नहीं है, ऑफिस में बॉस से बात करना मैच है कि नहीं है, अपने जूनियर से बात करना भी मैच है, नहीं मैच है? अगर मेरी टीम पॉजिटिव होगी तो तभी तो जीतूंगा, नहीं तो क्या होगा? अगर मेरी टीम नेगेटिव होगी तो क्या होगा, मैच तो हारेंगे ना, हर जगह हम डिफिटेड महसूस करेंगे ना, दुखी महसूस करेंगे ना। तो मेरा मन कैसा होना चाहिए, और ये मुझे खुद बनाना है। तो मेरे विचार कैसे हैं, कौन से विचार, आप ये वाले विचार करें, ABCD के विचार करें, है ना, ये जो ABCD के आप विचार करेंगे तो अपने आप को ये रियलाइज, सत्य सत्य विचार करें, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। चलते फिरते अपने आप से बात करें, देह तो एक दिन छूट जाएगी, किस दिन छूटे पता नहीं है, मैं इसको चलाने वाला कौन, मैं यहां हूं, मैं एक ट्विंकलिंग स्टार हूं, मैं शाइनिंग स्टार हूं, उस आत्मा सात एनर्जी शरीर में जा रही है। सात एनर्जी कौन कौन सी है, इंग्लिश में मैं इसको लिखूं तो KPPLHBP, KP स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, है ना, ये सीक्वेंस याद कर लो, है ना, KPPLHBP। तो K माना ABCD, तो जितना इस ज्ञान का, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध, और D फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, इस संसार रूपी नाटक में, ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और परमात्मा कौन है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, हम क्या सोचते हैं, बुरा हुआ है। किसी ने आपकी इंसल्ट करता है रोज आपकी, अच्छा हुआ बुरा हुआ है? कोई आप रोज गाली देता है, आप अच्छा अच्छा कर रहे तो भी गाली दे रहे हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ? बुरा हुआ। किसी ने आपके 10 लाख रुपए ले लिए, वापस नहीं कर रहा है, हाँ, अच्छा हुआ बुरा हुआ? नहीं, मैंने कहा कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, है ना, सारी बीमारियां मन की और तन की, डिप्रेशन, नींद का ना आना, स्किजोफ्रेनिया हो जाना, ऑब्सेशन हो जाना, या आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक आना, आपको मोटापा होना, एसिडिटी बनना, पेट में हजमा ना होना, किडनी की हड्डी, गर्दन की हड्डी, कमर की हड्डी खराब हो जाना, घुटने खराब हो जाना, माइग्रेन होना, सबका कारण ये है मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। और भगवान ने हमें क्या बताया, आपके साथ जो भी हुआ वो क्या हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा नहीं हुआ है। क्या हुआ है अच्छा, क्या हुआ है अच्छा, क्यों हुआ है? कर्मों का हिसाब, कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। 100 साल पहले अगर आपने किसी से 10 रुपए उधार लिया था, दोस्त था आपका, और इस जन्म में वो 100 साल के बाद वापस आपके पास आएगा नहीं आएगा? 10 रुपया तो मूलधन हो गया, ब्याज कितना हो गया? ब्याज आप लगा के देखना, अभी टाइम नहीं है बताने का। ब्याज वैसे इसका है 4,19,00,000 रुपया, है ना भाई? डबल डबल करते जाए, 10-10, जैसे तीन, पहले 3 साल में 1945 तक 3 साल में डबल होता था, 67 तक 4 साल में डबल होता था, 87 तक 5 साल में डबल होता था, 87 के बाद 6-7-8-9 साल में डबल हो रहा है। आप लगा लेना, बीच में डबल डबल करते जाना, इस पे पहुंच जाओ 4,19,00,000 रुपए पे। अगर आपने 100 साल पहले उस किसी व्यक्ति को, आपकी पत्नी है मान लो, आपने 2 बार उसकी इंसल्ट की थी, वो किसी और रिलेशनशिप में थी, इस जन्म में आपके पास आ गई, तो कितनी बार इंसल्ट करेगी? बोलो बोलो, कितनी बार इंसल्ट होगी? सोचो आप जरा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? सोचो आप, है ना? ऐसे पति की भी बात है, खाली पत्नी की बात नहीं करो। नहीं समझ आई आपको? नहीं समझ आई? आपने 2 बार गाली दी थी, अब कितनी गाली खानी पड़ेगी इस जन्म में? सुबह शाम पानी पी करके आपको, पी करके बार बार पानी पी के भी गाली देंगे, गला सूखे सूख जाता है ना, फिर आपको, और आपको सहनी पड़ेगी। नहीं सहेंगे तो क्या होगा? पेनल्टी लग जाएगी, डबल हो जाएगी। 10 लाख रुपए ले लिया उसने, आप कोर्ट केस कर दो उसके ऊपर, 10 लाख और खर्च हो जाएंगे, पैसे फिर भी नहीं मिलेंगे, 20 लाख हो गए, नहीं हो गए? क्योंकि उसने वापस लेने थे। आपका बेटा है, आपने 1 करोड़ खर्च कर दिया उसकी पढ़ाई में, अभी भी खुश नहीं है आपसे, कहता पापा क्या करते हो, आपको कुछ करना नहीं आता, इतनी लोगों को अप्रोच होती है, इतने काम होते हैं, आप तो कुछ भी नहीं करते हो, है ना? क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसको 4 करोड़ देने बाकी हैं अभी। सुना आपने? समझ में आई नहीं आई? ये लाइफ ऑफ योगी है ना, ये हमको सिखाता है ना? आरती में गए ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो आत्मा, आत्मा के सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, बैटरी वहां से चार्ज होती है। आपके पत्नी, पति, बच्चे, दोस्त, भाई, बहन, सब क्या करते हैं? बैटरी चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, चार्ज वहां से होती है। तो चार्ज वहां से करते रहो और सबको शांति, प्यार, खुशी बांटते रहो, ठीक है? समझ आई? ये है लाइफ ऑफ ए योगी। समझ में आई नहीं आई? तो जितना ABCD को अंदर से अनुभव करो, मैं कौन हूं, हम, ये पत्नी कौन है, ये मेरा पति कौन है, ये बच्चे कौन है, ये मेरा बॉस कौन है, हम सब कौन है? आत्मा, हम सब एक उसकी संतान है, हमारे सर्व संबंध उसके साथ है। इस जन्म में हम इकट्ठे क्यों आए? कर्मों का हिसाब किताब है और ड्रामा, जो हुआ अच्छा और जो हो रहा है अभी समझ हमको आ गई है, पहले समझ नहीं थी। इस सत्य की समझ को बार बार जीना ही मेडिटेशन है, योगी है, योग करना है, ठीक है? तो ये जितना आप करो, और जो होने वाला है, क्योंकि ऐसा आप, मेरे बीज कैसा है, फल अच्छा निकलेगा। पहले बीज कैसे थे? गलत थे, बॉडी कॉन्शियस वाले बीज थे। अभी कैसा बीज है? सत्य का, सोल कॉन्शियस वाला बीज। तो फल भी बहुत अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो जितना इसको आप रियलाइज करते जाओ अपनी टीम को, तो आपके वाइब्रेशन कैसे बन जाएंगे? मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, सारे विश्व के सब मनुष्य आत्मा है, मेरे सब संबंध में क्या है, भाई भाई है। तो जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन जोड़ोगे, सबको शुभ भावना, सबको शांति, प्यार, खुशी पहुंचेगी, ठीक है? आपका वृत्ति कैसी बन जाएगी? वायुमंडल, ऑरा, आभा मंडल, शांति, प्यार, खुशी से भर जाएगा। उसमें जो भी आएगा वो भी शांत हो जाएगा। आपके इंप्रेशन कैसे हो जाएंगे शांति के? बिलीफ कैसे हो जाएंगे शांति वाले? ईश्वर मेरे साथ है, हमेशा क्या मन में रहेगा? ईश्वर अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात है? हमेशा ही रहेगा, एक नया विश्वास आपको पैदा हो गया, जहां भी मैं जाऊं भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा साथी है ना। और नई आदतें पड़ जाएंगी, जो जिसमें डर नहीं होगा। तो ये लाइफ ऑफ ए योगी है, ठीक है? उससे आप अपने सारे अंगों में जो बीमार है, एक एक्सपर्ट ड्राइवर, एक अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में नई गाड़ी दे दो आप, नई टोयोटा दे दो आप, है ना, 40 लाख की एल्टिस आती है, दे दो उसको, वो उसको थोड़ी देर में खटारा बना के ले आएगा, नहीं। और एक एक एक्सपर्ट ड्राइवर के हाथ में खटारा गाड़ी दे दो आप, क्या करेगा वो उसको, उसको भी ठीक करके चला लेगा, नहीं। आज की गाड़ी कैसी है हमारी सबकी, खटारा हो गई ना, टायर भी खराब हो गए, एक्सल भी खराब है, कार्बोरेटर भी खराब है, पेट में भी गड़बड़ है, यहां भी गड़बड़ है, नहीं, खटारा है कि नहीं है। तो हम यहां पर क्या बनने आए हो, एक्सपर्ट ड्राइवर बनने आए, क्या बनने आए हो, एक्सपर्ट ड्राइवर बनने आए, ठीक है। तो जितना इस ज्ञान को समझोगे, राजयोग को समझोगे, उतना क्या बन जाओगे, एक्सपर्ट ड्राइवर। फिर कैसी भी खटारा गाड़ी होगी उसे क्या करोगे, चला पाओगे, है ना। टायर पंचर होंगे, एक्सल भी खराब होगा, कार्बोरेटर भी खराब होगा, ये सब सिस्टम खराब होंगे, यहां भी खराबी होगी तो भी चल जाएगी, ठीक है। फिर झगड़ा नहीं होगा आपस में, दो बैल की तरह टकराओगे नहीं, है ना। घर में क्या करते हैं, एक छत के नीचे रहना है तो भी टकराते हैं। विष्णु को दिखाया ना, विष्णु क्या है, एक सिर चार बाजू दो पैर, यहां की वो गृहस्थी का रूप है सत्ययुग की, स्वर्ग की, तो वो गृहस्थी का रूप है, ऐसा सत्ययुग की गृहस्थी है, दोनों का एक सिर, एक ही जैसी सोच होती है, चार बाजू चार हैं काम करने के लिए, और चलना दोनों को एक ही रास्ते पे। अभी की गृहस्थी क्या है, रावण, माया रावण, पांच सिर आदमी के, रावण की फोटो देखना रामचरितमानस में, पांच सिर आदमी के, पांच सिर औरत के, बीच में गधे का सिर है ना, और दो बाजू है, चलना टांग दो ही है, 20 टांगे नहीं है, है ना। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि आज पांच विकार आदमी के, पांच घर में रह रहे हैं, पति पत्नी फिल्म देख रहे हैं टीवी पे, पत्नी की नजर शाहरुख खान पे जा रही है, पति की नजर माधुरी दीक्षित पे जा रही है, नहीं, मतलब उसका उसका काम विकार अलग है, उसका क्रोध अलग है, उसका लोभ अलग है, उसका मोह अलग है, उसका अहंकार अलग है, दोनों के अलग अलग है, नहीं है। उसको किसी बात पे क्रोध आता है, उसको किसी बात पे अलग मोह आता है, उसको किसी और बात पे आता है, दोनों के विचार मिलते ही नहीं है। तो 10 सिर हुए नहीं हुए, बाजू दो ही है, पति आके, पति पत्नी दोनों काम से आए, पति बैठ जाए चाय बना के ले आओ जी, है ना, अब वो हाथ तो दो ही हुए ना, वो बना के लाएगी, या फिर पत्नी आके बैठ जाएगी, ज्यादा डोमिनेंट पत्नी होगी तो आके बैठ जाएगी, आप चाय बना के लाओ जी, है ना, काम तो एक ही करेगा ना, तो मतलब फिर एक सहयोग नहीं है, चलना तो एक ही घर में है, रहना एक छत के नीचे है, तो आपस में ऐसे ऐसे लड़ते रहते हैं हमेशा, तो घर में सुख होगा क्या, नरक माना क्या, नरक मन ना अरक, जिसमें आत्मा का अरक नहीं है, इसेंस नहीं है, शांति प्यार खुशी के आत्मा का इसेंस है, और स्वर्ग, स्व माने आत्मा, आत्मा का अरग, जिस घर में शांति प्यार खुशी भरपूर है, तो हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहां पर हर घर में क्या होगा, सुख शांति होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप पूरा कोर्स कर लें, फिर सुबह चार दिन, मैंने जब से मैं समझा 33 साल से, तब से मैंने एक दिन भी चार बजे का मेडिटेशन मिस नहीं किया, कितना भी बिजी रहा किंतु मैं कभी मिस नहीं किया, कभी मैंने मुरली मिस नहीं की, 7 से 8 मुरली होती है सेंटर पे, कभी मिस नहीं की, एमडी का एग्जाम था उस दिन भी मिस नहीं की, है ना। और सोने के पहले लेटर लिखना, जो भी गलतियां हो गई, चार्ट भरना, कितनी देर मुझे सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास रहा, और फिर मुरली पढ़ के, फिर बाबा को 2 मिनट परमात्मा मेडिटेशन करके फिर सोना, और सारा दिन अटेंशन रखना कि मेरी दिनचर्या कैसी चल रही है। तो जब ये ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ कैसी बन जाएगी, सदा शांति प्यार खुशी से भरपूर हो जाएगी, उसी को कहते हैं लाइफ ऑफ ए योगी। और सब बीमारियां ना खाली आपकी बीमारियां ठीक होंगी, जहां भी आप रहोगे आपका आभामंडल आपके साथ रहेगा, और ये जितना जितना योग मेडिटेशन करोगे उतना बढ़ता जाएगा, पावर आती जाएगी, शक्तियां बढ़ती जाएंगी। और जैसे भले आपका बॉस गुस्से वाला है, भले आपके नीचे वाले काम करने वाले नहीं है, कोई आपको हर्ट करने भी आते हैं, आपके पास आते आते उनका मन बदल जाएगा, ठीक है, ऐसा आपका आभामंडल बन जाएगा, ऐसी शक्ति बन जाएगी आपके अंदर कि आप जहां भी जाएंगे गुलाब के फूल की तरह खुशबू फैलाते हुए जाएंगे, भले कांटे आएंगे आपके लाइफ में किंतु वो आपको हर्ट नहीं कर पाएंगे, गुस्सा करने वाले लोग आएंगे, गुस्सा इससे टकरा के आपके आभामंडल से टकरा के वापस चला जाएगा, आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। ओम शांति।